प्रस्तुत है महिला आरक्षण अभियान की दूसरी कड़ी।
नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं शशि।
और मैं वसंती। आप सभी के समक्ष लेकर आए हैं महिला आरक्षण अभियान की दूसरी कड़ी। पिछले कड़ी में हमने बात की थी कि क्यों जरूरी है महिला आरक्षण विधेयक का पारित होना।
तो इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे कि महिलाएं स्थानीय निकायों के चुनाव जीतकर अध्यक्ष, वार्ड पार्षद और मुखिया जैसे पदभार प्राप्त तो कर लेती हैं, पर उन्हें कोई फैसला नहीं लेने दिया जाता है। उन्हें हमेशा रोका या टोका जाता है या उनके कार्य में अड़चन डालने की कोशिश की जाती है और वो सिर्फ नाम की ही मुखिया या वार्ड पार्षद रह जाती हैं और उनके सब कार्य उनके पति, बेटे या घर के कोई पुरुष सदस्य करते हैं।
हाँ, यह तो बहुत ही चिंताजनक बात है कि एक तो इतने लंबे संघर्ष के बाद महिलाओं को बड़ी मुश्किल से स्थानीय निकायों में 50% का आरक्षण मिला है, पर उसे भी पुरुष प्रधान समाज अपने कब्जे में करने की कोशिश में है।
तुम बिल्कुल सही कह रही हो बसंती। चलो अब जान लेते हैं कि हमारे श्रोताओं का इस विषय में क्या कहना है। इस कड़ी के लिए जिन लोगों के विचार सर्वश्रेष्ठ प्रतिक्रिया के रूप में चुने गए हैं उनके नाम इस प्रकार हैं: मधुबनी से मनीष कुमार और संतोष कुमार मंडल। और साथ ही सुनेंगे मधुबनी से ही सतीश लाल द्वारा लिया गया एक साक्षात्कार। आप सभी श्रोताओं को बिहार मोबाइल वाणी पर अपनी राय प्रकट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
मैं मनीष कुमार गौरव चिथरी राजनगर से बोल रहा हूँ। महिला आरक्षण बिल जो लोकसभा में पारित होना है उसमें महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए ये जरूरी है कि हमारे यहाँ देखा जाता है कि यहाँ पे पंचायतों में मुखिया जो सरपंच ये जो जिसमें महिलाओं की भागीदारी है, लेकिन उनका जो है वो साक्षर नहीं होने की वजह से उन्हें उनकी पति जो है इस कार्य में काफी मनमानी करते हैं। तो हम कहना चाहेंगे कि मेरा विचार है कि इसमें महिलाओं को साक्षर बनाने के लिए, शिक्षित महिलाओं को कैंडिडेट बनाने के लिए जरूरी है कि महिला आरक्षण बिल पारित हो।
मैं संतोष कुमार मंडल, मधुबनी जिला खुटौना प्रखंड दुर्गीपट्टी पंचायत से। मैं सभी बिहार वाणी के श्रोता को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, बात रही महिला आरक्षण की तो मैं एनजीओ निर्देश संस्था के माध्यम से प्रियदर्शनी कार्यक्रम स्वयं सहायता समूह में सीओ पद पर काम किया हूँ। पहले महिला बैंक जाने से बहुत कतराती थी, परंतु समूह के माध्यम से सभी महिला बैंक जाती हैं। पहले हमने समूह बनाने के लिए बहुत सारी कठिनाइयां झेली, लेकिन मैं संघर्ष जारी रखा जिससे गांव की महिला ने आपसी मेल मिलाप की भावना जगाई। जब आपसी मेल मिलाप जग गया तो उन लोग के बीच हम छोटी बचत की भावना जगाई, जैसे 10 रुपया। लेकिन आज यही महिला 100 रुपया मंथली बचत कर रही है। लगभग 3 साल हो चुका है महिला आत्मनिर्भर होने को आ चुका है। वही बैंक से जब हम ऋण मुहैया कराने के लिए गए तो ग्रामीण बैंक, स्टेट बैंक ऋण देने से डरती थी। 3 साल बाद आज वही महिला को बैंक कैश क्रेडिट लिमिट दे रहे हैं, CCL जिसे बोला जाता है। महिला अपनी छोटी छोटी बचत से लमसम में महाजनी खत्म कर दिए है। कुछ भाग बाकी होगा क्योंकि मेरे दोस्तों हाथ की उंगली बराबर नहीं है। वैसे हमारे समाज की हर एक महिला एक तरीका नहीं होता है।
मैं सतीश लाल दास मधुबनी राजनगर से बिहार मोबाइल वाणी के लिए महिला आरक्षण बिल तो लोकसभा में पारित होना है उसके लिए सीता कुमारी अपनी राय दे रही है।
महिला आरक्षण बिल जो लोकसभा में पारित होना है उसमें योग्य महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित किया जाए, क्योंकि साक्षर महिलाओं की भागीदारी होने से वह कई कार्यों में पीछे पड़ जाती है, इसके कारण विकास का कार्य ठप हो जाता है।
वाकई लोगों की राय सुनकर तो यह लगता है कि महिलाओं के लिए कितना जरूरी है महिला आरक्षण विधेयक का सदन में पास होना। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो सन 2005-2006 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य परिवार सर्वेक्षण द्वारा किए गए सर्वे में पाया गया है कि 3 में से सिर्फ 1 महिला को ही अकेले कहीं आने जाने की अनुमति मिलती है, चाहे वह कार्यस्थल हो या बाजार आदि में जाना हो। और इन आंकड़ों में दिन ब दिन और गिरावट देखी जा रही है।
और आजकल रेप जैसी घटनाओं की संख्या में वृद्धि के कारण भी महिलाओं की गतिशीलता में अड़चनें पैदा हो रही हैं और इसका असर भविष्य में और देखने को मिलेगा।
वहीं सेंसस के आंकड़े महिला और पुरुष की साक्षरता दर की असमानता को दर्शाता है कि 75% पुरुष की तुलना में मात्र 54% या उससे कम महिलाएं शिक्षित हैं।
हमारा देश आर्थिक तरक्की की ओर अग्रसर तो है, लेकिन वहीं महिलाओं की आर्थिक स्थिति में भारी गिरावट हो रही है। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय की गणना को देखें तो पता चलेगा कि 1993-94 में महिलाओं की आर्थिक भागीदारी 36% थी, वहीं 2011-2012 में यह आंकड़ा घटकर 29% हो गई है।
यह तो बहुत ही चिंताजनक बात है। आज उदारीकरण के दौर में जहां देश इतना विकास कर रहा है, वहीं महिलाओं की भागीदारी और कम होती जा रही है। जब तक कि कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाएगा, महिलाओं की यही स्थिति बनी रहेगी। इसके लिए जरूरी है कि महिला आरक्षण बिल लाया जाए और इस तरह का जो समाज में असंतुलन है उसे खत्म किया जा सके।
श्रोताओं, अब जाने का समय हो गया है, पर जाते जाते हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि क्या कभी आपने यह अनुभव किया है कि आपके यहाँ की महिला मुखिया को वर्ण, जाति या धर्म के आधार में भेदभाव किया जाता है? और हमें यह भी बताएं कि क्या आपको लगता है कि महिला आरक्षण में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग या अल्पसंख्यक समाज की महिलाओं के लिए भी आरक्षण होना चाहिए? तो आप इस विषय पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए साक्षात्कार, परिचर्चा, गीत या कविता हमारे साथ जरूर साझा करें। अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए नंबर 3 दबाएं। सर्वश्रेष्ठ प्रतिक्रियाओं को हम अपनी अगली कड़ी यानी 24 मार्च सोमवार शाम 6 बजे को प्रसारित करेंगे।
सवाल एक बार फिर कि क्या कभी आपने यह अनुभव किया है कि आपके यहाँ की महिला मुखिया को वर्ण, जाति व धर्म के आधार में भेदभाव किया जाता है? और हमें यह भी बताएं कि क्या आपको लगता है कि महिला आरक्षण में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग या अल्पसंख्यक समाज की महिलाओं के लिए भी आरक्षण होना चाहिए? तो आप इस विषय पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए साक्षात्कार, परिचर्चा, गीत या कविता हमारे साथ जरूर साझा करें। अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए नंबर 3 दबाएं।
तो श्रोताओं, या न भूले कि सर्वश्रेष्ठ प्रतिक्रियाओं को हम अपनी अगली कड़ी यानी 24 मार्च सोमवार शाम 6 बजे को प्रसारित करेंगे। लेकिन समय के अभाव के कारण हम अपने कई श्रोताओं की प्रतिक्रियाओं को नहीं चला पाए, इसके लिए हमें खेद है। लेकिन आप अपनी राय या प्रतिक्रिया देना यूं ही जारी रखें।
धन्यवाद।